तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
किसने सजाया अपना दरबार भैये? पूरी को हो रही है। अच्छा, सजाया दरबार राजाओं ने, तो जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही दोनों चीजें हैं। बाबा के दिल तक पर भी वही बैठते हैं और भविष्य में ताज और तिलक भी उन्हें मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारी साधना है कि हम अकाल तख्त पर बैठा करें, अर्थात इसका बहुत अभ्यास कर लें। इससे आत्मा आत्मभिमानी बनती जाएगी और सारे गुण संस्कार श्रेष्ठ होते जाएंगे, विकार आपे ही छूट जाते हैं। जितनी भी मेहनत हो रही है पुरुषार्थ में उसकी जरूरत नहीं रहती अगर ये अभ्यास कर लिया जाए। बहुतों की जो एक समस्या रहती है कि व्यर्थ बहुत चलता है, बहुतों की समस्या है और ये समस्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है बताओ? ये रहस्य जो बाबा ने सुना इसको दुनिया में और कोई नहीं जानता। लोगों की कल्पनाओं से भी बाहर की चीज है कि अब वो समय आ गया है, आएगा नहीं, जब सभी के जन्म जन्म के कर्म जागृत हो रहे हैं अंदर में। उसके कारण अच्छे पुरुषार्थी भी ढीले हो रहे हैं। जिनको कभी कोई पुरुषार्थ में समस्या नहीं थी उनको आने लगी हैं। कईयों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बाबा एक चीज कहा करते थे, ऐसा समय आएगा सभी के अंदर किसी भी विकार का यदि अंश रह गया होगा तो वो बहुत तेज फैलने लगेगा। और बहुतों में विकार का अंश तो छोड़ो, सारा ही भरा हुआ है, तो वो तो अग्नि की तरह उन्हें जलाने लगा है। लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए ये बात कही थी कि विकारों का छोटा भी अंश न रहे, नहीं तो बढ़ जाएगा। तो अब हमें ये साधना बहुत अच्छी तरह करनी है। मुरली सुन के अच्छा अच्छा कह के खत्म कर देते हैं। इसका एक कारण भी है कि आज दूसरी मुरली चल गई सवेरे, कल तीसरी चल जाएगी। सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, तो लोग सोचते हैं भी ये करें या ये करें पहले, ये भी एक बात होती है। लेकिन सब एक ही हैं। अगर हम मस्तक सिंहासन पर बैठने की प्रैक्टिस करेंगे तो अनेक चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि देहभान के कारण ही अनेक विकार, अनेक व्यर्थ, अनेक बाधाएं, अनेक समस्याएं हैं जीवन में। और कल की सबसे सुंदर बात, आपको वो सुंदर लगी होगी, आज जो भी मिलने आए शांतिवन में, मैंने सबसे पूछा क्या लेकर जा रहे हो? भाव और भावनाएं बदलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मन में किसी के लिए क्या भाव है, ये ऐसा है, विचार करो। सभी चेक करेंगे अपने को। मनुष्य ने अब आते आते कलयुग के अंत तक भाव और भावनाओं को बहुत बिगाड़ लिया है। भाव तो दैहिक हो ही गए हैं, वो तो कॉमन बात है, पर भावनाएं भी बहुत बुरी हो गई हैं। स्वार्थ भाव बहुत बढ़ गया है दुनिया में, बढ़ाया नहीं, मेरे पास तो कितने लोग आने लगे, लोग पैसा लेकर दे नहीं रहे हैं, क्या करें भाई जी, कितना दे दिया था, मैं कहा 2-4 लाख होगा, छोड़ दो, 5 करोड़ दिए थे, लिखा पढ़ी की है, नहीं अपने ही थे, ऐसे ही दे दिया था। अब वो तो भूल ही गए कि उनको देना भी है। ये हाल संसार में मनुष्य का बढ़ता जा रहा है। स्वार्थ भाव बढ़ गया, दुर्भावनाएं बढ़ गई, गिराने की भावना हो गई है, कोई आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या का भाव हो गया है, ये सब बहुत बढ़ता गया है। पिछले 5-7 सालों में बहुत बढ़ गया और बढ़ेगा ही सब कुछ। बुराइयां भी बढ़ेंगी। इधर जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनका श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। तो ये बहुत सुंदर एक समय है हम बुराइयों की ओर चलें या तीव्र पुरुषार्थ की ओर चले, जिस ओर हम चलेंगे वो बढ़ने लगेगा। जैसे बाबा ने फिर याद दिलाया कल अचानक, बोलो आगे, और तो ये बहुकाल, लंबा काल, इसके बारे में बहुत प्रश्न उठते हैं लोगों के कि लंबा काल क्या। कहते हैं लोग, आप लोग तो पहले से आ गए, हम तो अभी आए। मैं तो हंसता हूं, तुम भी पहले आ जाते, किसने मना किया था, क्यों नहीं आए? बाबा के बच्चों ने तो ढिंढोरा पिटवाया था चारों ओर, कितने मेले किए, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, तुमको किसने रोका था? कह रहे नहीं, वो पड़ोसिन कहती थी ब्रह्मा कुमारियां अच्छी नहीं है, मां न जाना, घर छुड़ा देती हैं। मैंने कहा अब तो घर छुड़ा दिया ना, आ जाओ अब। तो हरेक का आने का समय तो अपना अपना है ना। अब भगवान से मिलना है, माताएं तो बहुत आती हैं, विधि बताओ, पति भी जल्दी आ जाए ज्ञान में, अनेक अनेक। और भावना तो श्रेष्ठ है, कोई बुराई तो इसमें नहीं है, पर किसी को ज्ञान में लाना, क्या ये किसी के हाथ में है? हरेक का समय, हरेक की भक्ति कंप्लीट हो, भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा रही हो, वो फट से भाग आते हैं। हम लोग जो सोचते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जा रहे हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं, किसके पास? भगवान से मिलन का मार्ग है ये, ढूंढने का मार्ग नहीं, मिलन। तो बाधाएं तो लोग डालते हैं, क्योंकि जीवन को पवित्र करना है, भोजन को शुद्ध करना है, विचारों को महान करना है, बहुतों को तो खान पान बदलने में ही बड़ी बाधाएं आती हैं, क्योंकि गंदगी घर घर में पहुंच गई है। तो हम सभी लंबे काल को किस रूप में लेंगे? चाहते हैं सभी लंबा काल का पुरुषार्थ करना? बोलो, सोच लो अच्छी तरह। मेरे कहने से तो आप कहेंगे हाँ, पर सचमुच आप चाहते हैं हमें आए हुए 3 साल हुए, 5 साल हुए, हम भी बहुत पुरुषार्थ करके आगे निकल जाएं? जो सच्चे मन से चाहेंगे, कल भी था मुरली में, बार बार आता है, दृढ़ता सफलता की चाबी है, लेकिन इस चाबी के पीछे माया के बिना जरे कौन सी अटैची में रखी है, उसे ही खोल के चुरा के लाऊंगी। तो दृढ़ता छूटती है, क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो, जो लोग व्रत रखते हैं भक्ति में, कईयों से रहा नहीं जाता, शाम आते आते इतनी भूख लगती है, हम तो तोड़ेंगे। दृढ़ता चाहिए ना भक्ति में भी। आज 2 माताएं आई मिलने, 3, उन्होंने कहा भाई जी आज करवा चौथ है, अभी हमें तो पता नहीं होता करवा चौथ क्या होता है भाई, तो कहा हमने व्रत नहीं रखा। मैंने कहा क्यों, पति नाराज नहीं हो जाएगा? नहीं, अब शिव बाबा पति है, वो तो मरेगा ही नहीं, हमें चिंता ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, हम तो खूब खाया आज ब्रह्मा भोजन। तो जब नियम बनते हैं उनको पालन करने में दृढ़ता, और दृढ़ता में थोड़ी मेहनत है, छूटती हैं चीजें। मनुष्य की मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि वो इस अभ्यास को करने में बार बार बोर भी होते हैं, होते हैं या नहीं? अब यहां सब आप माताएं आ गई, आपने भी तो व्रत नहीं रखा होगा ना, आज था कल था, आज आज आपने भी तो नहीं रखा होगा, रखा जैसे नहीं रखा, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, नहीं ऐसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो हम दृढ़ता को अपनाए रखें और आगे जाने के लिए, देखो मैं आपको बाबा की ये बात बहुत बार सबको याद दिलाता हूं, कोई निराश ना हो कि चांस खत्म हो गए हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा कि आखिर तक भी विजय माला की कुछ सीटें खाली रखी जाती हैं, तीन तो रखी जाती हैं। कोई भी तेज पुरुषार्थ करे और बैठ जाए, लेकिन सीट जैसे पहले हम लोग एक ड्रामा करते थे यहाँ, अब तो वो नहीं चलता। हम लोगों ने कम से कम 60 बार किया था, स्वर्ग में एक सीट खाली है, फैन चला दे। अब विजय माला की तीन सीट खाली हैं, सोच लो कौन कौन बैठना चाहेगा। हैं खाली हैं। बाबा ऐसा सुप्रीम टीचर है और उसकी प्लानिंग इतनी सुंदर है कि कोई शिकायत नहीं कर सकता। हम बाबा के अव्यक्त पाठ की समाप्ति पर आए, हमने न साकार को देखा न अव्यक्त को देखा, ये शिकायत हो ही नहीं सकती। निरंतर मिलन का अनुभव हो सकता है। कोई निरंतर न करे तो रोज सवेरे एक बार बहुत सुंदर मिलन के अनुभव होते हैं। अगर वो होने लगे तो ये भूल जाएगा कि हम देर से आए हैं। बाबा ने एक चीज और कह दी मुरलियों में, वो मुरलियों में भी कह दी कि तुम अब आए हो, अब ज्ञान बहुत सूक्ष्म हो गया है। आप में से कुछ को पता हो कि बाबा ने, शिव बाबा ज्योति स्वरूप है, ये बात तो लगभग 62 से कहनी शुरू की। उससे पहले कुछ और बातें होती थी, मैं आत्मा हूं इसका ही ज्यादा अभ्यास होता था। फिर ये बात और सूक्ष्म होती गई और बाबा व्यक्त हुए तो योग के भिन्न भिन्न प्रयोग बाबा ने सिखाए। साकार में वो सब नहीं थे, साकार में इतना ही था आत्मा समझ मुझे याद करो। लेकिन अव्यक्त में बाबा ने योग के भिन्न भिन्न मनोरंजक तरीके भी सिखा दिए। अब वो आपके सामने हैं, हमने भी सब सुनाए हैं क्लासेज में। एसेंस मिल रहा है ज्ञान का, जैसे मक्खन मिल रहा है, तो जो किसी आत्मा ने 20 साल में किया है वो अब आने वाले 2 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन करने की बहुत अच्छी लगन चाहिए। ये नहीं बस कह दिया हम लास्ट में आए सो फास्ट चले जाएंगे, कहने से नहीं जाएंगे। फास्ट के लिए फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अपने में दृढ़ता लाएं और ध्यान दें, आपको 2 साल हुए, आपको 1 ही साल हुआ है, या आप कल ही ज्ञान में आए हैं, अगर आप पुरुषार्थ को अपनी ऐसी गति दे दें, आते ही अच्छा नशा चढ़ जाए, आते ही संपूर्ण निश्चय हो जाए, आते ही तेज कदम हो जाएं, एक दिन में भी लंबा काल पुरुषार्थ चले, एक दिन 18 घंटे मान लें, 17 घंटे 18 घंटे, इसमें भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ चले, लंबा काल हो गया। ये नहीं 18 घंटों में हमारा तो 1 ही घंटा चला, बाकी तो हम काम धंधों में लग गए, वो नहीं। 1 साल का भी लंबा काल, 1 हफ्ते का भी लंबा काल पुरुषार्थ में चले। छोटे पावरफुल संकल्प करो, रोज अमृत वेले भी लंबा काल अच्छा अनुभव हो जाए। ऐसे ही नहीं उठ गए बैठ गए चार धाम के चक्कर लगा लिए, कई होगा तो नियम बन गया, चारों धाम में बैठा हो थोड़ी देर हो गई साधना, बैठने से काम नहीं चलेगा। और फटाफट बैठना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, बैठने से नहीं, वहां की सुंदर अनुभूति जो बाबा ने चारों बातें बताई थी, व्यर्थ संकल्प चले यहाँ, रूढ़ियान करनी हो यहाँ, पावरफुल बनना हो यहाँ, बाप समान बनना हो यहाँ, उस पे अच्छा चिंतन हो जाए, केवल बैठ गए भक्ति की तरह उससे काम नहीं चलेगा। तो सवेरे का भी लंबा काल आप इतना समझ लें 4 से 8, 4 से 7, 3 घंटे या 4 घंटे, इसमें कितना लंबा काल हमने श्रेष्ठ अभ्यास में बिताया। फिर साल का लंबा काल, तो हम लंबे काल के अभ्यासी कहलाएंगे। और सुन ले आप ध्यान से, क्यों बाबा ये कहता है कि लंबे काल का चाहिए, क्यों कहता है, कहां से जोड़ी थी बाबा ने बात, अचानक में क्या कहा, अचानक किसी की अंतिम घड़ी अचानक आ सकती है। आगे चलकर, दूर नहीं, जल्दी ही, जिस दिन भी संसार में प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो गई, वो कितनी देर में आती है, कितनी देर लगाती है सुशील भाई, अभी हम यहां बैठे हमें पता ही नहीं, कहीं धरती हिलने लगी जोर से, ऐसा समय आएगा शहर के शहर नीचे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया यहां, सब फटाफट होगा। तो लंबे काल का अर्थ है जिन्होंने लंबा काल जो अभ्यास किया होगा, अंत में वही स्थिति नेचुरल रूप से बन जाएगी। जो सबसे बड़ी चीज है पुरुषार्थ की, कि अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए, वो सहज काम नहीं है। ये नहीं हम तो एक घंटा पहले से योग लगाना शुरू कर देंगे, पता थोड़ा ही होगा एक घंटे बाद जाना है, ना तो पता होगा, और अगर पता भी हो, मान लो आपको बता दिया जाए कल सवेरे 8 बजे आपको इस संसार से चलना है, एक तो आप शायद रात सोएंगे नहीं, बच्चों का क्या होगा, फलानी चीज कहाँ रखी, बच्चों को बुलाऊं बता दूं, आज तक तो मैंने पति से ये सब छुपाए रखा, वो क्या कहेगा, तूने बताया नहीं, दिया नहीं, कितने संकल्प चलेंगे, जो कुछ भरा हुआ है बुद्धि में सब जागृत हो जाता है अंत में। अंत की यही गति है, अंत में आप समझ लो एक दिन अंत, मैं केवल आखिरी क्षण नहीं कह रहा हूं, अंत एक दिन आप मान लो अंत का, उसमें वो सब चीजें इमर्ज होंगी जो बुद्धि में भरा है, उसको कोई रोक नहीं सकेगा, सब जागृत हो जाएगा। इसलिए लंबा काल जिन्होंने योग किया है, लंबा काल जिन्होंने बाबा का आह्वान किया अच्छी तरह, अंत में तुरंत याद आ जाएगा बाबा आ जाओ, जिन्होंने लंबा काल उससे प्यार किया है, उस प्यार की स्थिति अंत में तुरंत बन जाएगी, जिन्होंने लंबा काल प्योरिटी को दृढ़ किया है, अंत में चित्त निर्मल हो जाएगा, और जिन्होंने दूसरों को कटु वचन बोलकर कष्ट दिया है, क्या होगा उनको, अब आप बताना, आपको बताना है, जिसने कटु वचन बोलकर बहुतों को कष्ट पहुंचाया है क्या होगा, वो सब आके खड़े हो जाएंगे सामने बुद्धि में, ऑटोमेटिक है ये प्रोसेस, उसको कोई हटा नहीं सकेगा, क्योंकि वो जो अंतिम समय है उसमें मनुष्य की श्रेष्ठ स्मृतियां भी जागृत हो जाती हैं, तो उसे लगेगा अंत में रियलाइज होगा मैंने ये गलत काम किए, एक बार अंत के समय, एक बार माना आखिरी सेकंड में नहीं, लंबा समय एक दिन समझ लो आप, 4 दिन, किसी को 1 हफ्ता, किसी को 1 मास भी, वो सब चीजें जो उसने की हैं वो सामने आती रहेंगी, आत्मा पश्चाताप भी करेगी, क्षमा मांगेगी, चित्त शांत होगा तब वापिस जाएगी। तो हम सभी लंबे काल पर ध्यान दें, लंबे काल से कोई संस्कार हमारा चलता ना रहा हो उसे चेंज करें, और लंबे समय तक उसके बदले में अच्छा संस्कार धारण हो, ताकि वो फिर जागृत न हो। मान लो किसी में फीलिंग का संस्कार है, किसी में भय का संस्कार है, किसी में ज्यादा सोचने का संस्कार है, किसी में छोटी-छोटी बातों से परेशान होने का संस्कार है, और बीमारी हो गई आखिर में, तो ये सब संस्कार काम करेंगे, उसे डर भी बहुत लगेगा, वो सोचेंगे भी बहुत ज्यादा, अब मेरा क्या होगा, उनको परेशानियां भी ज्यादा होंगी, तो योगयुक्त स्थिति बनेगी नहीं, बाबा याद रहेगा नहीं। इसलिए भक्ति में भी प्रचलन किया लोगों ने, अंत में गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, कोई रामायण सुनाओ, जिसका जो प्रिय ग्रंथ था सुनाओ इन्हें, ताकि उनकी स्मृतियां कुछ जागृत हों, श्रेष्ठ स्मृति में वो शरीर छोड़ें। तो लंबा काल पुरुषार्थ करना है, लंबे काल में ही संस्कार अच्छे बनते हैं, चाहे वो प्योरिटी की बात हो, क्रोध को जीतने की बात हो, इच्छाओं को समाप्त करने की बात हो। अभी 3-4 दिन पहले अखबार में छपा, राजस्थान पत्रिका में, एक यंग छोटी आयु की माता ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? पति ने मनपसंद कपड़े नहीं सिलाए। कितनी बुद्धिमान थी ये, न बच्चों की तरफ मोह था इसका, न पति से प्यार था, किससे प्यार था? कपड़ों से। सच्ची घटना, अखबार में छपा, पढ़ा होगा कईयों ने, मेरा भी ध्यान गया। सुसाइड किया, क्यों? पति ने मनपसंद कपड़े नहीं सिलवाए। दिवाली के लिए हो रहा होगा झगड़ा कुछ, तो ये सब भी संस्कार है ना। देखो, उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया पर वो संस्कार को नहीं छोड़ा। तो ऐसा कोई भी संस्कार जो हमारी परेशानियों का कारण बन जाए, वो अंत में जागृत हो जाएगा। तो लंबे समय से ही सुंदर संस्कारों का निर्माण होता है। मान लो किसी के मन में लंबा काल अशांति रही है, परेशान रहे हैं, तो लंबा काल की शांति ही उसे सच्ची शांति देगी। लंबा समय चित्त शांत रहेगा और तब ये शांति की शक्ति भरेगी आत्मा में और तब बहुत काम होगा। तो चाहे कितनी भी संस्कारों की आप गणना कर लें, बहुत सारे संस्कार हैं उल्टे और उनके बदले में सीधे अच्छे, वो सब आ जाएंगे आत्मविमानी स्थिति से, योग अभ्यास से, स्वमान से, और एक चीज और बोलो, 5 स्वरूपों के अभ्यास से। 5 स्वरूपों का अभ्यास जिस पे बाबा ने बहुत जोर दिया कई कई साल, वो इसलिए आवश्यक है कि हमारे 5ों ही स्वरूप दिव्यता से भरे हुए हैं। आज की मुरली याद है ना, हमारे 5ों ही स्वरूप संपूर्ण पवित्रता से भरे हुए हैं, संतुष्टता से, संपन्नता से भरे हुए हैं। जितना जितना उन्हें हम याद करेंगे, देखो देवता संपन्न है ना, संपन्न का अर्थ होता है संपूर्ण नहीं, संपन्न का अर्थ है भरपूर। जैसे कोई व्यक्ति बहुत साहूकार हो, उसको कहेंगे भाई ये धन संपन्न है। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, ये विद्या संपन्न है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, थोड़ा होने पर भी संतुष्ट, वो भी संपन्न है। संतुष्टता संपन्नता का बीज भी है, निशानी भी है। तो देवता संपन्न है ना, भरपूर, कुछ भी चाहिए नहीं। हमारा इष्ट देव देवी स्वरूप दाता का स्वरूप है, हम संपन्न हैं। अब बाबा के बन गए ब्राह्मण, हमें संपन्न होना है नहीं, होना है भरपूर, सभी खजानों में तृप्त, आत्मा अंदर से आवाज करे, गीत गाए, सब कुछ मिल गया, तृप्त हो जाए। ये हर एक की व्यक्तिगत गहरी फीलिंग होगी। तो इन सब के लिए लंबा काल साधनाएं करनी पड़ेंगी। जब से भी आप ज्ञान में आए हैं, तब से लंबा काल साधना। तो ये संकल्प छोड़ दो, हम देर से आए हैं, नहीं तो क्या होगा, रोज रोज क्या होगा, हम तो देर से आए हैं, इसलिए तो कुछ हो नहीं सकता। जो कर सकते थे वो भी नहीं करेंगे। अब भी सब कुछ हो सकता है, फुल मार्जिन है, पक्का कर रहे हैं आज से सभी। ये संकल्प बिल्कुल अभी इसी क्षण छोड़ दें। हम देर से आए, हमसे तो कुछ होगा नहीं, होगा उनसे नहीं जो कुछ करेंगे नहीं, होगा उनसे जो करने के लिए दृढ़ संकल्पधारी होंगे। और इस समय एक विशेष बात और है जो सभी को जान लेनी चाहिए, जब से बाबा का अव्यक्त पाठ बंद हुआ है तब से बाबा स्पेशल अनुभूतियां सबको करा रहे हैं, स्पेशल बल दे रहे हैं, बहुत मदद मिल रही है, पक्का समझ लें सभी, बहुत मदद मिल रही है उनकी हमें, इस मदद का फायदा उठाना भी बुद्धिमानी है। कैसे उठाएंगे? मदद मिल रही है, अब सोचना है इस मदद का फायदा कैसे उठाएंगे। बोलो, बाबा की मदद किनको मिलेगी? देखो, एक बहुत अच्छी बात सभी सीख लें, जब बाबा जो कुछ करने को कहे तुरंत जो शुरू करते हैं बहुत मदद मिलती है। एक बार तो बाबा ने पूरा ही डिटेल किया, क्लास सुन रहे, अभी मुरली सुन रहे हैं, बाबा ये कह रहे हैं, सोचा कमरे में जाके प्लान बनाएंगे, किसी ने सोचा घर जाके ये करेंगे, तेजी से करेंगे, किसी ने सोचा बच्चे की शादी है बस ये पूरी हो जाए ना फिर करेंगे, और भी बहुत कारण आप सब जानते हैं। तो क्या हुआ, जो नशा था, जो उमंग थी, वो हॉल से निकलते ही कम होनी शुरू हो गई, कल तक तो वो आधी भी नहीं रहेगी और घर जाने तक जैसे गए थे वैसे ही रह जाएगी, वापिस आ गए। इसलिए ईश्वरीय बल उन्हें मिलता है जो तुरंत करना प्रारंभ कर देते हैं, कल पर नहीं छोड़ते, जो आज्ञाकारी हैं बाबा के उन्हें उसकी बहुत मदद मिलती है, जो उसको बहुत प्यार करते हैं प्यार के रिटर्न में बाबा बहुत मदद देते हैं, जो उसको मदद कर रहे हैं क्या होगा उनको, ये तो सहज बात है ना, उनको उसकी मदद मिलेगी। तो ये समय को बहुत सुंदर वरदान है, इसका फायदा उठाएं, हम आगे जाएंगे। मैं देखता हूं कुछ लोगों को, ये केवल कहने की बात नहीं है, दो चार लोग ऐसे मिलते हैं, हम एक साल से ज्ञान में आए हैं और एक साल से ही हमारी स्थिति बहुत सुंदर हो गई है। कईयों ने अपनी बुराइयां तो पहले दिन छोड़ दी, बहुत बल मिला उन्हें, दोबारा टच नहीं किया उन चीजों को, दृढ़ प्रतिज्ञाएं कर ली कुछ चीजों के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ प्रारंभ किया। श्रेष्ठ पुरुषार्थ का बीज कौन सा है, और थोड़ा सोच लो, अमृत वेला, जिसमें भोलानाथ राजी होकर बैठता है हमें सब कुछ देने के लिए, बस लेना आना चाहिए, अधिकार उस पे हो जाना चाहिए। एक बात पर सभी काम करेंगे, भट्टी में भी आए हैं बहुत भाई बहने, आप इस बात पे पूरी भट्टी में अपना चिंतन भी चलाएं, भगवान हमारा है उस पर हमारा अधिकार है। सोचना, हर एक को अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना है, इस अधिकार का कैसे फायदा उठाएं, है या नहीं अधिकार, उस पर अधिकार है, उसकी शक्तियों पर भी अधिकार है, जैसे उसका ज्ञान हमारा ज्ञान हो गया ना, अब हम ये थोड़ा कहेंगे बाबा का ज्ञान है, हमारा ज्ञान भी है वो, ऐसे उसके सारे खजाने उन पर हमारा अधिकार है, उसकी शक्तियों पर भी हमारा अधिकार है, उसके वरदानों पर भी हमारा अधिकार है, इसे प्राप्त करना ये एक श्रेष्ठ बुद्धि का काम है, ये सबको आता नहीं। तो अमृत वेले जो बीज है हमारे पुरुषार्थ का, उसमें सभी बहुत अच्छे से अच्छा करें। रोटी नहीं, रसम नहीं कि हम तो चारों धाम लगाए, इससे कोई नहीं मिलने वाला। क्या किया वहां बैठकर हमने, सब कुछ इससे मिलेगा। उससे तो केवल भावना का फल मिलता है। हाँ भाई, बाबा की झोपड़ी में बैठाए हम, बाबा कमरे में बैठाए, लेकिन बाबा कमरे में बैठकर बाबा ब्रह्मा जैसी तपस्या करने की प्रेरणा मिली, झोपड़ी में बैठकर बाबा जैसा ज्ञान मनन करने का दृढ़ संकल्प किया, ये करना है। भाव और भावना तो लंबा काल साधना करनी है, तब अंत काल सुहाना होगा, सुख भरा। और मैं वो बाबा की बात भी याद दिला दूं, मैं तो बार बार इसलिए भी याद दिलाता हूं कि मुझे याद रहे, तो आज आपको फिर से याद दिला रहा हूं। बाबा का महावाक्य साकार मुरली के वरदान में आया, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वे स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। ये नहीं कि बिल्डिंग गिर गई, हम भी दब गए उसमें, पड़े हैं अंदर अंधेरी कोठरी में, मौत का इंतजार कर रहे हैं, ये बहुत बुरी गति होगी लोगों की। श्रेष्ठ गति स्वेच्छा से देह छोड़ना, स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ना। बाबा ने ये दोनों बातें साकार में बताई हैं, मुरलियों में आई हैं। अचानक देह छोड़ना है तो वो भी अच्छा, लेकिन सेकंड क्लास अच्छा, हमें पता नहीं चला गए। लेकिन श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होकर देह छोड़ना, वो है सर्वश्रेष्ठ स्थिति। वो भी श्रेष्ठ है, पर सेकंड कि भाई कष्ट नहीं हुआ, होता है बहुत बाबा के बच्चों को होता है। किसने सुनाया अभी कि हमारे पापा आए ऑफिस से, मुझे बुलाया, बेटा जरा पानी देना, मैं पानी गिलास लेकर गया, पानी पिया और गए, कुछ भी नहीं, एक सेकंड पहले थे, एक सेकंड के बाद नहीं है, किसी को नहीं पता था। अच्छी मृत्यु है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ना, बाबा ने कहा, बाबा से बातें हो रही हो, बाबा ये पुराना वश छोड़कर हम आ रहे हैं आपके पास, तो ऐसा लगेगा बाबा लेने आ गए हमें। शास्त्रों में ना पुष्पक विमान आ गया, ये सब विजन है, साक्षात्कार है, ऐसी फीलिंग होगी। भाव और भावना को बदलना है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। एक है आत्मिक दृष्टि से देखना, वो थोड़ी मेहनत की प्रैक्टिस भी है। सबके मस्तक में चमकती हुई मणि देखें, वो बहुत सुंदर अभ्यास है हमारा। और इसकी सुंदरता ये है, जिसको भी हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे उसको हमारे वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। अभ्यास कर सकते हैं आप, इसका फायदा उठा सकते हैं आप। अपने बच्चों को आत्मा देखकर जब वो सोए हुए हों, अच्छी बातें कह सकते हैं, मन से, मुख से नहीं, मन से, माइंड टू माइंड, बहुत गहरा प्रभाव होगा उन पर। लेकिन आत्मा देखकर स्वमान में स्थित होकर, ये दो बातें नहीं भूलनी है। जिस स्वमान में हम स्थित होते हैं वैसे वाइब्रेशंस हमसे जाएंगे, और जब हम उन्हें आत्मा देखेंगे तो ये वाइब्रेशंस उनको ग्रहण होने लगेंगे। फिर अच्छे संकल्प दो, आपका बच्चा शराब पीता है, संकल्प दो तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, देव कुल की हो, ये तो असुरों का भोजन है, छोड़ दो। रोज करो सेम टाइम, उठते ही दो चार दिन के बाद उसे संकल्प आने लगेगा, मैं ये गलत कर रहा हूं, शराब पीना है तो बेकार की चीज है, छोड़ू। और जैसे जैसे आप उसे बल देंगे, वाइब्रेशन देंगे, उसमें छोड़ने की ताकत आएगी। तो दोनों चीज चाहिए, बुराई छोड़ने के लिए हमारे वाइब्रेशंस सकास और सुंदर विचार। तो आत्मिक भाव का अभ्यास करें। अब घर में बैठे अकेले संकल्प करो, संसार के सभी मनुष्य आत्माएं हैं, सभी धर्मों के मनुष्य आत्माएं हैं, सब शरीरों में एक एक रूह बैठी है, आत्मा बैठी है, सब शिव बाबा के बच्चे हैं। ये भेद तो यहाँ नीचे के हैं, ये फलानी जाति का, ये फलाने धर्म का, आत्मा का एक ही स्वधर्म। ये चिंतन कर दो, इससे आत्मिक भाव बढ़ता जाएगा और ये भाव फिर हो जाएगा आपके नजदीकी संबंधियों के लिए भी जिनमें मोह ममता ज्यादा रहती है। आत्मिक भाव, ये सब आत्माएं हैं तो आपसे उनको क्या जाएगा बोलो? नहीं, ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। अब तक जा रहा है मोह के वाइब्रेशंस, अब जाएंगे आत्मिक प्यार के वाइब्रेशन जो मोह को रिप्लेस करेंगे। मोह की जगह आत्मिक प्यार हो जाएगा जो मोह से हजार गुना ज्यादा श्रेष्ठ है, जिसमें कष्ट नहीं है, सुख है, सच्चा प्यार है वो, निष्काम निस्वार्थ प्यार है वो। मोह ममता में स्वार्थ बहुत रहता है, कष्ट होता है। बीमार बच्चा हुआ उतनी बीमार माँ भी हो गई, होता है नहीं? माताओं को सबको होता है, सबको अनुभव है। आत्मिक प्यार होगा तो वो बीमार हुआ आपको क्या होगा? नहीं, बीमार नहीं होंगे, इतना ही नहीं, माताएं चुप हो गई कि बड़ी खराब बात हो रही है। बोलो, बच्चा बीमार हुआ आप उसे वाइब्रेशंस देंगे, संभाल करेंगे, परेशान नहीं होंगे, संकल्प रहेगा ठीक हो जाएगा, बाबा है ना, सब ठीक कर देगा। ये आत्मिक भाव का रिजल्ट दिखाई देगा। आत्मिक भाव बहुत आवश्यक है। देखो, बाबा ने कभी एक बात कही है, दुनिया की दृष्टि से तो वो खराब बात है, पर वो तो महाकाल बनकर भी आया है ना, कह देता है साफ साफ, मैं तो तुम्हें ले जाने आया हूं, तुम जाना चाहो कैसे ले जाऊंगा? पता है ना बाबा क्या कहता है, तुम्हारे सारे, अब मैं रॉयल भाषा बोल देता हूं, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश करा के तुम्हें पावन बनाकर पलकों में छुपा कर ले जाऊंगा। ये तो पसंद है ना, मारपीट के नहीं, बहुत प्यार से तुम्हें ले जाऊंगा। तो कहा, दुनिया हाहाकार करेगी, ये मरा, वो मर गया, ये मर गया, ये हो गया, और तुम कहोगे आत्माएं अपनी मुक्ति धाम में चली गई, भगवान के पास चली गई, जिसकी उन्होंने जन्म जन्म कामना की थी, उनकी इच्छा पूरी हो गई। याद रहेगा, 5000 साल का खेल पूरा हो रहा है, अब सबको ही चलना है, मेरे हो या तेरे हो, सबको चलना है। शुभ भावनाएं, अपनों के लिए तो सभी शुभ भावना रखते हैं, उस शुभ भावना में क्या गड़बड़ हो रही है? बहुत गहरी बात है बाबा की, सभी ध्यान देंगे। आपको अपने बच्चे के लिए शुभ भावनाएं हैं, वो तो हैं, ऐसे कौन माँ बाप होंगे जिनको शुभ भावनाएं ना हो, और होनी ही चाहिए। लेकिन मोह इसके बीच में दीवार है, जो आपके शुभ वाइब्रेशंस का प्रभाव उन पर नहीं पड़ने देता। जो बहुत लोग शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे में ये कमजोरी है, बुरे संग में आ गया है, हम बहुत ये कर रहे हैं, योग लगा रहे, अच्छी भावनाएं रख रहे, उस पर असर नहीं होता, असर नहीं होता, इसका अर्थ बीच में मोह की दीवार है। अगर आत्मिक भाव भी हो, शुभ भावना के साथ आत्मिक भाव भी हो, तो असर न पड़े ये हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत ही राज भरा एक महावाक्य सुनाया है, ध्यान से सुन लेंगे, नोट कर लो जो कर रहे हैं। निष्काम भाव से किए गए श्रेष्ठ संकल्प अवश्य पूरे होते हैं। श्रेष्ठ भावना से किए गए श्रेष्ठ संकल्प अवश्य पूरे होते हैं। तो हमारे मन में दूसरों के लिए कल्याण की भावना हो, अब नोट कर लें आप और अपने में चेंज लाएंगे, जो बाबा ने कहा ना चेंज, परिवर्तन। बाबा ने तो बड़ा पावरफुल स्वरूप बता दिया, मैं को चेंज करो स्वमान में, मेरे को चेंज करो मेरा बाबा इसमें, और ऐसे एक एक संकल्प चेंज होता रहे। तो भावनाओं में सुख देने की भावना हो। हम थोड़ी बड़ी बड़ी बात भी कर लेते हैं, दूसरों की पीड़ा हरने की भावना भी हो, दूसरों को मनुष्य देवता बनाने की भावना भी हो, दूसरों से भगवान को मिलाने की, दूसरों को भगवान से मिलाने की भावना भी हो। ये मान भावनाएं, सबको आगे बढ़ाने की भावना, संगठनों के लिए सबको आगे बढ़ाने की भावना, सबको योग्य बनाने की भावना, सबको सिखाने की भावना। तीन चीजें ले लें बस। लोग सिखाते नहीं, आपके घर में नौकर भी आया काम करने वाला, आप चाहेंगे परफेक्ट हो, परफेक्ट होता तो नौकरी करने आता क्या? सिखाना, सिखाने से वो आपका ऐसा मित्र बनेगा और जिस दिन सीख जाएगा सब कुछ आपको फ्री कर देगा, होगा या नहीं? और आप सोच रहे रोज डांट रहे ये नहीं किया वो नहीं किया, सिखाते कुछ नहीं, तो दुखी होके भाग जाएगा, चोरी करके भाग जाएगा घर में, होगा या नहीं? दूसरों को आगे बढ़ाने की, दूसरों को योग्य बनाने की भावना। कई लोग सोचते हैं ये भी योग्य बन जाएंगे तो मुझे कौन पूछेगा, बहुतों के मन में भावना रहती है, इसलिए सिखाते ही नहीं अच्छी चीज, इन्हें भी सिखा दिया तो भाषण तो ये करने लगेगी मेरा, ये गलत भावना है अच्छी। जो दूसरों को योग्य बनाएंगे वो संसार में सबसे ज्यादा योग्य कहलाएंगे, नंबर ही इस आधार पे मिलेगा। तो अपनी भावनाओं को चेक करना, हो गया टाइम, चलो भावनाओं को चेंज करना, और अब सभी ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठेंगे। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।